dann salieron los grimaus billahim bismillah rahman rahim assalamu alaikum khawatino hazrat jab امام غزالی نے کسی جگہ ایک اگزامپل دی تھی کہ ہم پانی جمع کرنے کے لیے ایک حوض کھودتے ہیں, اس حوض میں پانی جمع کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایک چینل کھودا جائے, واٹر چینل, اور کسی اور سورس آف واٹر سے اس چینل کے ذریعے پانی حوض تک لایا جائے اور اس حوض کو ہم بھر دیں. ایک ذریعہ یہ ہے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس حوض کو ہم اتنا زیادہ گہرا کھول دیں کہ نیچے سے پانی نکل آئے, تو وہ حوض کی تہہ سے آتا ہوا پانی اس حوض کو بھر دے. وہ ایک آگے چل کے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی, بڑی خوبصورت بات, کہ جو ہم باہر کے کسی سورس سے واٹر چینل کے ذریعے پانی حوض تک لائیں گے, اس سے حوض بھر تو جائے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پانی گدلا بھی ہو جائے گا اور کم بھی ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی تہہ سے پانی پھوٹا, ہم نے اتنا گہرا کھود لیا, تو وہ پانی صاف بھی ہوگا, ٹھنڈا بھی ہوگا اور کثرت سے ہوگا. تو یہاں یہ آج ایسے بیٹھے ہوئے بات کرتے کرتے یاد آ گئی یہ مثال, کہ میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ علم کے حصول کے کئی طریقے ہیں جن میں ایک اکتسابی بھی ہے اور ایک عطا ہے. ایک قسم اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج, اس کا اردو میں اس وقت اس کا اردو متبادل میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی. اب تینوں میں فرق ہے جو میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا آپ کی خدمت میں, کہ جو عطا ہے وہ تو اگر آپ کے مرشد آپ سے خوش ہو گئے کسی وجہ سے, انہوں نے آپ کو عطا فرما دیا تو آپ کو علم مل گیا وہ, لیکن وہ اتنی ہی مقدار میں ہے جتنی مقدار میں آپ کو مرشد صاحب نے عطا فرمایا. وہ کچھ عرصے کے بعد معدوم ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ کا ایک سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ ڈال کچھ نہیں رہے, جمع کچھ نہیں کرا رہے, اس سے خرچ نل ہو جائے گا. تو یہ تو عطا ہے اور اس کا احوال ہے. ایک ہے ایکوائرڈ نالج. وہ ایکوائرڈ نالج یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کے ادھر سے سن سنا کے سیکھ جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر کہیں تحقیق کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. اگر ہم یہ چاہیں کہ جو ایک چیز ہم نے سیکھی ہے سن کے پڑھ کے اس کو کہیں اپلائی کر کے اور اس سے آگے ہم چل پڑیں, وہ ممکن نہیں ہوگا. یوں کہیے کہ اپلیکیشن آف مائنڈ اس کے اندر ممکن نہیں ہوتی. آپ اس میں کوئی نزلت پیدا نہیں کر سکتے, کوئی نئی چیز آپ اس کے ذریعے سے ڈیولپ نہیں کر پاتے. وہ ایک لگی بندی جیسے ٹرین اپنی پٹری پر چلتی ہے اور وہ دائیں بائیں کہیں اور سے گزر نہیں سکتی, اس پٹری پر کوئی چٹان آن گرے تو ٹرین بند ہو گئی, سیلاب آیا پٹری زیر آب آ گئی ٹرین بند ہو گئی. جو اقتصابی علم ہے اس کی مثال بالکل وہ ہے جو حوض کو گہرا کھودا جائے, اتنا گہرا کہ اس کی تہ سے پانی خود نکل آئے, تو پھر لوگ اس حوض میں سے پانی بھر بھر کے لے جاتے رہیں. جیسے کنواں ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے فائدے کا موجب بن جاتا ہے. تو اقتصابی علم یہ ہے کہ ہم اس راہ میں محنت کرتے ہیں, اس راہ میں کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں, اس سے روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے. تو رب تعالیٰ ہم پر راضی ہو کر عنایات کرتا ہے, رحمت نازل فرماتا ہے اور اس سے وہ ہمیں علم عطا فرما دیتا ہے. یہ ایسا علم ہے جو بڑھتا چلا جائے گا. آپ تک جتنا دل چاہے آپ اسے تقسیم کریں لیکن یہ بجائے گھٹنے کے بڑھ جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پھر اپنے دل کو اس طرح سے, قلب کو اس طرح صاف کر لیں کہ دنیا کی آلائشیں اس سے نکل جائیں. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. اور وہ دل آلائشوں سے پاک, موٹی موٹی چیزوں سے اگر ہو, باقی ڈیٹیل میں تو کافی لمبی چلی جائے گی فہرست. ہمیں جو مار پڑتی ہے زیادہ وہ ایگو سے پڑتی ہے. انا ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دوسروں کے ساتھ اس میں زیادہ تر کی بنیاد ہمارے انا ہوتی ہے. فلاں نے میری بے عزتی کر دی, فلاں نے مجھے گالی دے دی, فلاں نے مجھے شرمندہ کر دیا, فلاں نے مجھے تانا دے دیا, فلاں نے میری غیبت کر دی, میرے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. یہ ایگو ہے, یہ ہمیں کہیں نہیں جینے دے گی پھر. تو انا کو اس لیے کچلا جاتا ہے. آپ کے مرشد پہلا کام کریں گے وہ یہی ہے کہ آپ کی انا کو کچلنے کی کوشش کریں گے. دوسری چیز جو انسان कोई इल्म रूहानी इल्म की राह पर नहीं जाने देगी, वो गैर अल्लाह से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत, ये इंसान को हिलने नहीं देती, माल से मोहब्बत, जाहो जलाल से मोहब्बत, उहदे से मोहब्बत, तो ये सब दुनिया की मोहब्बत है। ये हमें नहीं हिलने देती किसी तरह भी। और तीसरी चीज ये है कि हम नफ्स की ख्वाहिशात के गुलाम हो जाएं, हम नफ्स की गुलामी करते हैं, तो वो हमें फिर कहीं का नहीं छोड़ता। तो अगर हम फोकस कर लें इन तीन चीजों पर, इस बात को समझना कोई दुश्वार नहीं है कि ये जो अना है हमारी, इसमें आपने अक्सर मुझ जैसे लोगों को कहते सुना होगा कि साहब उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं एक बात भूलता हूं कि बहसियत मुसलमान के कुरान पर मेरा ईमान है कि ये कलाम इलाही है और इसमें जो कुछ फरमाया गया ये रब ने फरमाया है और उसका एक एक हरफ सही है, दुरुस्त है। कुरान मुझे ये कहता है कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हां जिसे वो चाहता है वो अता कर देता है। तो अगर तमाम इज्जतें रब ही के लिए हैं तो मेरी कहां है इज्जत, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। अब इसी का दूसरा हिस्सा है कि हां जिसे वो चाहता है इज्जत अता करता है। तो मेरा रब तो ऑल टाइम पावरफुल है, उससे बढ़कर ताकतवर कोई नहीं है। अगर वो मुझे इज्जत देना चाहेगा तो सारी दुनिया मिलके भी मेरी बेइज्जती नहीं कर पाएगी। तो मैं ये फिक्र क्यों करूं कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी। दोनों ही बातें हैं, मेरी इज्जत है ही कहां जो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कि इज्जत तो सारी मेरे रब की है। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरा रब मुझे इज्जत देना चाहेगा तो सारी दुनिया मिलकर भी मेरी मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती। तो ये झगड़ा खत्म हो गया कि फलाने मुझे गाली दे दी, फलाने मेरी बेइज्जती कर दी। दूसरी चीज जो शिकवे हमारे दिल में रहते हैं कि साहब फला आदमी ने मुझे गाली दे दी, फलाने मेरे बारे में ये बात कर दी। हम यहां सब इकट्ठे बैठे हैं, एक मिनट के लिए आप सोचिए इस बात को कि कोई एक शख्स अंदर एंटर हो और वो आके मुझे बेतहाशा बुरा भला कहने लगे, तमाम बुरे अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल कर ले और मैं खामोश बैठा रहूं, मुस्कुराता रहूं, तो वो ये सब कुछ बुरा भला कहने के बाद जाने लगे तो मैं इसको बड़ा मुस्कुराते हुए बड़ी पोलाइटली ये कहूंगे आप बाहर धूप से आए तशरीफ रखिए, पानी तो पी लीजिए, वो मजीद गालियां दे और चला जाए। आप ये बताइए कि आप मुझे बुरा कहेंगे या उस आदमी को बुरा समझेंगे दिल में आप, कि बुरा कौन है। तो वो जो मेरी बेइज्जती करने आया था वो अपना इमेज खराब करके चला गया। हर आदमी कह रहा है कि देखिए क्या आदमी था, तो ये आदमी तो चुप बैठा था, वो सर पे चढ़ा आ रहा था बंदा, तो बेइज्जती किसकी हुई? तो इसी तरह जो आदमी हमें हमारी गैर मौजूदगी में बुरा कह रहा है, मुझे अल्लामा मशरकी की किताब, बड़ी मशहूर किताब तस्करा, कहीं आज से 55 साल पहले पढ़ी होगी मैंने, उसमें अल्लामा मशरकी ने झूठ के बारे में एक जुमला कहा। अल्लामा मशरकी चूंकि अल्लामा थे, तो और उस जमाने में रिवाज भी ये था कि भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो अल्फाज जरा वो थोड़े भारी भरकम है, तो उन्होंने झूठ के बारे में कहा कि झूठ बेने ही मिसल उस पत्थर के है जो पानी की सतह पर चंद लम्हों के लिए अरताश तो पैदा कर सकता है, लेकिन अपने आप अब्दुल अब्दाल के लिए अथा गहराइयों में खो देता है। तो अगर कोई आदमी मेरी गैर मौजूदगी में मुझे बुरा भला कह रहा है और उसका मेरे मुझे इल्म भी है, तो अगर मैं मुस्कुरा दूं और इससे भी ज्यादा अगर अल्लाह ने मुझे हौसला दिया हो, तो जब कोई आके मुझे कहे कि वो आदमी आपके बारे में ये कह रहा था, ये तोहमत लगा रहा था, तो मेरे अंदर अगर हौसला है तो मैं ये कह दूं कि भाई वो तो बड़ा भला आदमी है, वो गलत बयानी क्यों करेगा, तो जो कुछ उसने मेरे बारे में कहा वो सच होगा, यकीन कर ले आप। होगा क्या कि कुछ अरसे के बाद वो बातें करने वाला खुद ही गिर जाएगा लोगों की नजरों से। तो हमारा ये पहलू जो है, जो हमें बहकाता है, वो भी इसमें कि हम गलत समझते हैं उसको। और तीसरी बात जो मैंने अर्ज की कि मोहब्बत है, ये एक फितरी अमर है कि इंसान को अपनी औलाद से, अपने माल से मोहब्बत जरूर होती है, अपनी जान से। लेकिन रब ताला किधर को बुलाता है मुझे, इंपॉर्टेंट तो ये है कि रब ताला तो मुझे ये चाहता है कि मैं माल से और जान से मैं जहाद करूं उसकी राह में। सदका और खैरात क्या है, और अल्लाह के दीन के लिए दुश्मन से लड़ना और उस राह में अपनी जान दे देना क्या है? तो ये फितरी अमर तो है, लेकिन रब के साथ इश्क और ये एहसास कि वो मेरा आका है, मैं उसका गुलाम हूं और उसकी हर बात मानना मुझ पर फर्ज है, वो इन सब चीजों पर सुप्रीम हो जाएगा। नफ्स के खिलाफ जहाद करना पड़ता है। तो जब तक कि हम ये काम नहीं करते हैं, हमारा कल्ब पाक साफ नहीं होता। और रब ताला इंतहाई पाकीजा है, वो ऐसी जगह रह नहीं सकता जहां आलाइशें हों। तो इल्म के लिए ये नतीजा इसका ये निकलता है कि पहले तो हम अपने दिल को इन आलाइशों से पाक कर लें, अना से, नफ्स की गुलामी से, और गैर अल्लाह की मोहब्बत से, तो फिर उस कल्ब में अगर हम मेहनत करें तो इल्म समा जाएगा। सवालों का सिलसिला सवाल है इनका कि क्या ये मुमकिन है कि एक ही इलाके में किसी विसाल शुदा और हयात वली अल्लाह दोनों का तसर्रुफ हो लेकिन ड्यूटीज मुख्तलिफ हों, क्या उनकी हदूद मुतय्यन होती हैं। मेरा ख्याल है लास्ट संडे या उससे प्रीवियस संडे किसी सवाल का जवाब देते हुए मैंने ये अर्ज किया था कि अथॉरिटी उसी की होती है जो कुर्सी में बैठा है। जो दुनिया से चले गए वली अल्लाह, बेशक उनका अम्र जारी और सारी हो, लेकिन जो आदमी कुर्सी में बैठा है इख्तियारात उसी के पास होंगे। तसर्रुफ इन मायनों में है कि वो साहिब अमर है, वो बंदा जैसे बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया साहिब अमर है, उनका अमर आज भी जारी और सारी है, लेकिन जो आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है दस्तखत उसी के चलेंगे। और हदूद का तायुन इख्तियारात से है कि किसी की वलायत कितनी फैली है, वो उन हदूद के अंदर उसी का तसर्रुफ है जो कुर्सी में बैठा है। अगला सवाल इनका ये है कि अगर कोई वली अल्लाह तफवीज शुदा ड्यूटी हतुल मकदूर बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे लेकिन नताज खातिर खान न निकले तो क्या उस वली अल्लाह को सरजनश का सामना करना पड़ता है। कानून फितरत ये है कि अगर हम सही समत में एफर्ट करते हैं तो उसके नताइज अच्छे ही निकलेंगे। वही जो बड़ा मशहूर मुहावरा है कि बुरे कामों के नतीजे बुरे, तो अच्छे कामों के, अच्छे अमाल के नतीजे अच्छे ही निकलते हैं। अगर कोई वली अल्लाह अपनी ड्यूटी कर रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि नताइज खातिर खान ना निकले। और ये कराम के यहां आपके मुर्शिद साहब, अगर उनके पास आप जाएंगे तो शुरू ही में वो आपको एक बात की बड़ी शिद्दत से तलकीन करेंगे, बल्कि आपको वॉच करेंगे एंड ही विल मेक श्योर कि आप अपनी ड्यूटी में फेल ना हो। तालीम यही देंगे कि ड्यूटी सबसे पहले, बाकी सब चीजें बाद में। तो तरबियत तो इंसान की मुर्शिद के हाथों पहले दिन से शुरू हो जाती है कि ड्यूटी मुझे सबसे पहले करनी है। तो वली अल्लाह जब तक उसको स्टैंप लगती है, उसके मुर्शिद उसे कोई वलायत सौंपते हैं कि फला इलाका तुम्हारी वलायत है, वहां चले जाओ, जाके दीन का काम करो, वो उस वक्त होता है जब वो अपने काम में पुख्ता हो गया होता है, उसके मुर्शिद उसे हर हर तरीके से उसकी छान फटक कर लेते हैं कि इसमें कोई खामियां बाकी तो नहीं रही, फिर उसको इजाजत दे दी जाती है। तो ये पहली बात ये है कि वली अल्लाह अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही से अदा करेगा, पूरी दयानतदारी से अदा करेगा, पूरी नेक नियती से अदा करेगा। तो जो काम इंसान नेक नियती से करता है, दयानतदारी से करता है, तनदेही से करता है, उसके नतायज पॉजिटिव ही निकलते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसके नतायज गलत आ जाए। वक्ती तौर पर कहीं झटका लग जाएगा, लेकिन लेटर ऑन नतायज बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो इसलिए उसकी सरजनश का कोई सवाल ही नहीं है। इनका अगला सवाल ये है कि अपने बातिन को मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो रखने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, गुफ्तगू करते हुए भी लम्हा भर के लिए इस ध्यान और तवज्जो में फर्क ना आए। वलायत, बल्कि यूं कहिए तसव्वुफ के रास्ते में एक चीज मैंडेटरी है, कि इस राह के राही दुरूद शरीफ बहुत पढ़ते हैं। होता यह है कि एक वर्द या एक जिक्र जब हम करते हैं तो शुरू में एक कॉन्शियस एफर्ट हमें करनी पड़ती है, और जो अल्फाज हमारी जुबान से अदा हो रहे हैं उसके बारे में हम बड़े कॉन्शियस होते हैं कि इसका तलफ्फुज़ सही हो, तरतीब सही हो, गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब जुबान, उसको उर्फ़ियाम में ये कहते हैं कि जुबान रवां हो गई, तो फिर हमारा इन चीजों से वो जो कॉन्शियस एफर्ट है वो नहीं रहती, वो हम रवानी में अदा करते हैं उसको, तो जुबान हमारी इसको अदा करती रहती। अब ये एक बड़ा बारीक संकता है तसव्वुफ का, कि हम बल्कि औलिया कराम ये कहते हैं कि जिक्र आपकी जुबान से मुंतकिल हो जाना चाहिए दिल को। पहले आपका जहन जिक्र करता है, कि जहन जुबान को अहकामात जारी करता है। लास्ट संडे शायद मैं जिक्र कर रहा था कि तसव्वुफ में हमारे आज़ा जो हैं, हाथ पांव, जुबान, आंखें, ये मातहत हैं हमारे कल्ब की, कि कल्ब से जो ख्वाहिश उठती है ये उसकी तामील करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं ये चाहूं कि ये मैं पेपर वेट पकड़ूं, तो ये मेरा हाथ उस ख्याल को अमली जामा पहनाएगा। दुनियावी जुबान में बात कर ले हम मैनेजमेंट की टर्म्स में, ये आजा हमारे, ये एग्जीक्यूशन ये हुक्म बजा लाते हैं, इनके जिम्मे एग्जीक्यूशन है, लेकिन कल्ब में ख्वाहिश या ख्याल जनरेट होता है। तो पहले जहनी तौर पर हम उधर को रागिब होते हैं और जुबान हमारी उस जिक्र को अदा करती है। फकीर इस जिक्र को उतना आला दर्जे का नहीं गर्दानते कि जिक्र जुबान से हो रहा है। फकीर ये चाहता है कि जो जिक्र है वो जुबान से शिफ्ट हो जाए, दिल पर चला जाए और हमारा कल्ब उसका जिक्र करे। तो जब जिक्र के उस मकाम पर फकीर जाता है जहां जुबान से शिफ्ट हो जाए कल्ब को, तो फिर हर वक्त ध्यान रब की तरफ रहता है। अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो ध्यान हमारा हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिक्र जुबान से शिफ्ट हो जाए कल्ब की तरफ। अब वो तवज्जो से होगा। जब हम तवज्जो बांध कर कॉन्सेंट्रेट करके मुसलसल जिक्र करते हैं तो एक वक्त आता है कि न चाहते हुए भी बेसाख्ता हमारा दिल जिक्र कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि साहब बेसाख्ता जुबान से बात निकल गई है, वो यही है। तो जब हम उस मकाम पर आ जाएंगे कि कल्ब हमारा जिक्र करेगा, तो समझ लीजिए कि हमारा ध्यान अब हर वक्त उधर ही लगा है। हम दुनियावी काम कर तो रहे हैं लेकिन हमारा कल्ब मतवज्जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिक्र जुबान से कल्ब पर शिफ्ट हो जाए। अगला सवाल है कि क्या वजह है कि जब कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आंखों से ज़ियारत करता है या किसी से ज़ियारत की तफसीलात सुनता है तो उसे अपना सारा वजूद गहरी खामोशी और एक अनजाने एहसास में दबता महसूस होता है। कई साल पहले यहां जिक्र हुआ था कि वज़ाइफ किस तरह से काम करते हैं, जिक्र अज़कार कैसे काम करते हैं, उनके असरात हमारे ऊपर किस तरह से आते हैं। तो उसमें भी एक डिफ्रेंसिएशन रखी थी कि हमारे कल्ब पर भी उसके असरात नाजिल होते हैं और हमारे जिस्म पर भी उसके असरात पैदा होते हैं। और उसी जिम्न में ये यहां जिक्र हुआ था कि इंसान जब जिक्र करता है कोई तो उसके बॉडी में जो पहले से कुदरत ने करंट रखा है, जो आमतौर पर 3.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक होता है, वो फर्दर डेवलप होता है और उस करंट से जो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है हमारी बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन जब हम नेकी की तरफ चले जाते हैं और जिक्र अज़कार करते हैं, रब को पुकारते रहते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता चला जाता है और उसके असरात बड़ी दूर दूर तक पड़ते हैं। यही वजह है कि आप मुख्तलिफ फकीरों से जाके जब मिलेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि जब आप वहां गए तो आप पर एक रोब दबदबा तारी हो गया, जो बात आप सोच के गए थे कि मैं ये दुआ कराऊंगा, वो भूल गए आप। घर से एक पूरा डायलॉग सोचकर गए कि मैं इस तरह से बात करूंगा। उस फकीर के सामने गए तो वो सारी बात ही भूल गए। या कुछ जगहों पर गए तो वहां जुबान नहीं साथ दे रही। वो सब उस फकीर के मैग्नेटिक फील्ड का असर है जो आप पर असरअंदाज हो रहा है। जितना ज्यादा, जितना बड़ा वो साहिब इल्म होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वसीब भी होगा और स्ट्रांग भी होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, रब ताला के बाद सबसे पाक साफ हैं, सबसे फरिश्तों से ज्यादा मासूम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। तो जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें अपने असर में लेता है और नतीजा ये होता है कि हर इंसान पर उसकी रूहानी कैफियत के मुताबिक असरात मरतब होते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी आता है। कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोगों को देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही उनका जिस्म एक झटका सा लेता है जो बड़ा विजिबल होता है। कुछ लोगों के आंसू जारी हो जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आते ही। ऐसे औलिया कराम गुजरे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सामने आते ही बेहोश हो जाते रहे कि उनका जिस्म उसे सहार ही नहीं सका उस मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये असरात मरतब होते हैं लेकिन ये वेरी कर जाते हैं इंसान की अपनी रूहानी कैफियत से कि उसकी रूह की लताफत जिस डिग्री की है वो उसके मुताबिक असरअंदाज हो जाते हैं। तो ये वजह है कि एक सन्नाटा सा, जिसको महावरतन उर्दू में हम कहते हैं, वो सन्नाटे में आ गया बंदा, वो एक सन्नाटा सा छाता है इंसान पर और उसके बाद उसकी वो कैफियत जो मैंने कहा कि कई कैफियत आती हैं, उनमें से कोई एक कैफियत उस पर तारी हो जाती बंदे पर। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैग्नेटिक फील्ड है और वो इतना स्ट्रांग है कि पूरी कायनात को अपने असर में लिए हुए है। अगला इनका सवाल है कि औलिया कराम मुशाहदाए हक और मुशाहदाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और क्यों? हम जब भी कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसकी बुनियादें खोदी जाती हैं, उनकी तामीर होती है, फिर उसके ऊपर मंजिलें दूसरी बिल्डअप होती हैं। किसी भी मंजिल की बुनियादें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उसको आप उतनी ही बुलंदी तक ले जा पाएंगे। अगर बुनियादें मजबूत नहीं हैं तो आप ज्यादा मंजिल उस पर तामीर कर नहीं सकते कि गिर जाएगी। इंसान की रूहानी तरक्की وہ اسی طرح شروع ہوگی کہ ہم اپنے مرشد کی بات کو بلا چوں چرا مانتے ہیں کہ اگر میرے مرشد صاحب مجھے یہ حکم دے دیں کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا دو تو دنیاوی تعلیم مجھے بتا رہی ہے کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا کے میری موت واقع ہو جائے گی, لیکن میں اپنے مرشد کی بات مان جاؤں گا فوراً اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ورنہ مرشد تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتے کسی جس سے کسی کو نقصان ہو جائے. یہ صرف استعارے کے طور پہ یوز کیا ہے اسے میں نے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد صاحب جو مجھے حکم دیں گے میں اس کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کر لوں گا. یہاں سے مجھے حکم ماننے کی عادت میری ڈیولپ ہوگی, یہ ٹریننگ ہے. وہ رب تک میں پہنچ نہیں سکتا تب وقت کے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نہ ہو. رب تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جو تعلیمات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ہم ان پر پوری طرح سے عمل کریں. تو یوں مشاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی پری ریکویزٹ ہے مشاہدہ حق کے لیے. میں مشاہدہ حق کی منزل پر جا ہی نہیں سکتا تب وقت کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کر بیٹھ نہ جاؤں. مشاہدہ حق مجھے ملے گا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در مبارک سے ہے, اس کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا. تو جتنے بھی فقیر ہیں وہ اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک, اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو وہاں سے از خود انہیں مشاہدہ حق تک پہنچا دیا جاتا ہے, وہ خود بخود وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ رب کو عزیز ہوتے ہیں کہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ تو آپ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. تو در حقیقت ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہو تو اللہ کو عزیز ہو جاتے ہیں. تو کسی فقیر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر جائے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا زینہ ہے تو پریفرنس وہی ہوگی ہر فقیر کی. ان کا ایک اور اگلا سوال یہ ہے کہ ابتدا میں جب کسی مرید کو مشاہدہ عطا ہوتا ہے تو کیا اس کے مرشد اس کی روحانی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ خطرناک صورتوں یا آوازوں سے مرید ڈر نہ جائے؟ ایک آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں, اس کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو لوکل سلیکشن آفس ہے فوج کا وہ وہاں جاتا ہے, اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے جہاں اس کو پرکھا جاتا ہے, اس کا ایک میڈیکل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے. تو جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بادی النظر میں بظاہر इस लायक है कि वो फौज का हिस्सा बन जाए, तो फिर उसको डिटेल टेस्ट के लिए उसको ISSB में बुलाया जाता है, जहां उसकी मुख्तलिफ सलाहियतों को परखा जाता है। टेस्ट उससे जो दिए जाते हैं वो उसकी मुख्तलिफ सलाहियतों का टेस्ट होता है, वहीं उसका साइको एनालिसिस भी होता है। उसके बाद फिर उसको 2 साल एकेडमी में गुजारना होते हैं, जहां उसे तमाम तरह के अलूम सिखाए जाते हैं और निगरानी की जाती है कि वो सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा। तो 2 साल में पेशतर इसके कि वो पास आउट हो जाए, उसको पूरी तरह वक्तन फवक्तन उसके टेस्ट हो रहे होते हैं, तो सिर्फ वही आदमी पास होता है। और इस दौरान फायरिंग वगैरह भी होती है और लाइव होती है कि उसके दिल से डर और खौफ कोई निकल जाए, अगर है तो गोली का खौफ दिल से निकाल लेते हैं। फिर कहीं जाके वो सबसे निचले दर्जे का अफसर बनता है, और वो अफसर बनने के बाद फिर सही ट्रेनिंग उसकी शुरू होती है कि उसकी जो रबिंग की जाती है वो इंतहाई दर्जे की है रबिंग। तो जितना ज्यादा सख्त उसका बॉस होगा, जो जितनी बेरहमाना रबिंग उसकी करेगा, वो उतना ही अच्छा बाद में अफसर बनता है। अब ये आपको एग्जाम्पल दुनियावी इसलिए दी कि इससे आप फैमिलियर हैं। तकरीबन यही सिलसिला तसव्वुफ में है कि मुर्शिद मुझे कबूल ही नहीं करेंगे अपनी शागिर्दी में तब वक्त के वो मरिए इनिशियली मेरी छान पटक न कर लें अच्छी तरह से। तो अगर वो मुझे देखते हैं, समझते हैं कि मैं इस लायक हूं कि मुझे ये इल्म दे दिया जाए, तो वो फिर मेरे ऊपर मेहनत करना शुरू करेंगे। और मुझे जेर निगरानी रख के तो सिखाएंगे। बाय द टाइम मैं उस मकाम तक पहुंचूंगा जहां मुझे चीजें दिखाई देने लगे, मैं चीजों को महसूस करने लगूं, या मेरे साथ वारदात पेश आने लगे, तो मेरी ट्रेनिंग इतनी सख्त हो गई होगी कि मेरे दिल से ये डर निकल जाएगा कि अगर किसी गैर मरई चीज को मैंने देखा है तो अब अगर मैं देख लूं तो मेरे तो जान निकल जाएगी, बेहोश होकर गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी ट्रेनिंग की है मेरे मुर्शिद साहब ने, तो शायद मेरे लिए वो कोई नई बात ना हो और ना मैं उससे खौफजदा हूं, तो बड़े इत्मीनान से बैठा रहूंगा कि ठीक है। तो मुशाहदे की मकाम तक पहुंचते पहुंचूंगा मैं उस वक्त जब मेरी ट्रेनिंग बड़ी शदीद हो गई होगी। तो इतनी ट्रेनिंग के बाद फिर मेरे दिल से डर और खौफ सारा निकल गया होगा, मेरे लिए कोई वो नई बात नहीं, मैं उसको एक रूटीन की बात लूंगा और आराम से उसको हैंडल कर लूंगा। तो हमें पहले तो ये अपने आप को यकीन दिला देना लेना चाहिए कि कोई भी शख्स उस मकाम तक आता ही नहीं है जब तक के उसकी पूरी तरह ट्रेनिंग ना हो जाए। तो ट्रेनिंग के बाद डर खौफ का कोई सवाल ही नहीं। तो और अगर किसी स्टेज पर मुर्शिद ये समझे तो वो मदद नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक समझदार बाप अपने बच्चे को दरिया में या तालाब में या नहर में धक्का देता है कि वो तैरना सीखे, ऐसा नहीं है कि वो उसे छोड़ देगा। वो तो बैठा गहरी नजर से देख रहा है, जहां वो महसूस करता है कि अब ये डूबेगा, फौरन हाथ बढ़ा के उसे पानी से बाहर निकाल लेगा कि डूबने ना पाए। लेकिन एफर्ट उसी को करने देगा कि हाथ पांव मारे अपनी जान बचाने के लिए, ताकि इसे तैरना आ जाए। तो मुर्शिद एग्जैक्टली यही सलूक करते हैं। सॉरी, ज्यादा टाइम ले गया मैं आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर इसको आगे बढ़ाएंगे बात को। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अस्सलामु अलैकुम।